नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। विश्व भर के प्रमुख देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के भारत के प्रयासों की कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जापान, सऊदी अरब, नीदरलैंड और दक्षिण कोरिया के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक WB की सालाना बैठक से इतर हुई इन द्विपक्षीय बैठकों में सीतारमण ने अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर बात की। दुनिया के सामने खड़ी प्रमुख आर्थिक चुनौतियां, विशेषकर ऊर्जा संकट और मुद्रास्फीति, कर्ज वहनीयता और जलवायु परिवर्तन के बारे में चर्चा की। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने इन नेताओं से इस बारे में बात की कि अगले साल G20 समूह की अध्यक्षता करने के दौरान भारत को किस तरह की भूमिका निभानी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को अपने जापानी समकक्ष शुनुची सुजुकी के साथ द्विपक्षीय बैठक की और दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत आर्थिक सहयोग से संबंधित प्रमुख एजेंडे पर चर्चा की। जापानी वित्त मंत्री के साथ बैठक के दौरान सीतारमण ने कहा कि ये वर्ष भारत जापान द्विपक्षीय संबंधों के लिए विशेष रहा, क्योंकि दोनों देश आपसी राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसके अलावा इस वर्ष भारत अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ भी मना रहा है। वित्त मंत्रालय की ओर से किए गए ट्वीट के मुताबिक सीतारमण ने कहा कि 2023 विश्व मंच पर भारत और जापान के लिए बड़ी जिम्मेदारियां लेकर आया है, क्योंकि दोनों देश क्रमशः G20 और G7 की अध्यक्षता संभाल रहे हैं। देश के व्यापक आर्थिक आंकड़ों में कमजोरी और सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग तथा वित्तीय शेयरों के नुकसान में जाने से बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 175 अंक से अधिक टूट गया। निफ्टी में भी गिरावट आई। कारोबारियों ने कहा कि इसके अलावा विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी और वैश्विक शेयरों में बिकवाली से भी निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स 179.48 अंक या 0.31% गिरकर 57,446.43 अंक पर आ गया। इसी तरह NSE निफ्टी 35.65 अंक या 0.21% टूटकर 17,087.95 अंक पर था। सेंसेक्स में सबसे ज्यादा 5.20% की गिरावट विप्रो में हुई। इसके अलावा HDFC, TCS, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट और कोटक बैंक गिरने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल थे। दूसरी ओर HCL टेक का शेयर 3.50% चढ़ गया। M&M, टाटा स्टील, डॉक्टर रेडीज, इंडसइंड बैंक, NTPC भी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। भारतीय अर्थव्यवस्था को बुधवार को खुदरा मुद्रास्फीति और औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों के रूप में दोहरे झटके का सामना करना पड़ा। आंकड़ों के मुताबिक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी के चलते खुदरा मुद्रास्फीति 5 महीने के उच्च स्तर 7.4% पर पहुंच गई, जबकि औद्योगिक उत्पादन पिछले 18 माह में पहली बार घट गया। अन्य एशियाई बाजारों में सियोल, टोक्यो, शंघाई और हांगकांग के बाजार नुकसान में कारोबार कर रहे थे। अमेरिकी बाजार भी गिरावट के साथ बंद हुए थे। पिछले कारोबारी सत्र में बुधवार को 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 478.59 अंक यानी 0.84% चढ़कर 57,625.91 अंक पर बंद हुआ था। घरेलू शेयर बाजार में गिरावट और घरेलू स्तर पर व्यापक आर्थिक आंकड़ों में कमजोरी के बीच बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया शुरुआती सौदों में सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था। ये डॉलर के मुकाबले 82.30 पर खुला, फिर मामूली बढ़त के साथ 82.29 प्रति डॉलर पर आ गया। इस तरह रुपया पिछले बंद भाव के मुकाबले 4 पैसे चढ़ा। सुबह के कारोबार में रुपया 82.25 से 82.34 प्रति डॉलर के बीच कारोबार कर रहा था। बुधवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपए की विनिमय दर 12 पैसे टूटकर 82.33 प्रति डॉलर पर पहुंच गई थी। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.02% टूटकर 113.29 पर पहुँच गया। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 0.01% चढ़कर $92.46 प्रति बैरल के भाव पर था। शेयर बाजार के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बुधवार को शुद्ध रूप से 542.36 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी की कंपनी अडानी टाटा नेटवर्क लिमिटेड को टेलीकॉम सर्विस का लाइसेंस मिल गया है और अब अडानी दूरसंचार सेवाएं देने के लिए सक्षम हो चुके हैं। हाल ही में गौतम अडानी ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री की थी। अडानी ग्रुप ने टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री के दौरान कहा था कि वह अपने डेटा सेंटर के लिए एक स्पेक्ट्रम ऑक्शन में एंट्री ले रहा है। अडानी समूह का प्लान अपने डेटा सेंटर के साथ सुपर ऐप के लिए एयरवेव का उपयोग करना है। पीटीआई के एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि अडानी डेटा नेटवर्क्स को यूएलएएस दिया गया है। वहीं एक अन्य अधिकारी ने बताया कि सोमवार को परमिट दिया गया। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की एक यूनिट अडानी डेटा नेटवर्क्स लिमिटेड ADNL ने हाल ही में 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में 20 वर्षों के लिए 212 करोड़ रुपए प्राइस के 26 गीगाहर्ट्ज मिलीमीटर वेव बैंड में 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का प्रयोग करने का अधिकार हासिल किया। अडानी समूह सुपर ऐप बिजली वितरण से लेकर हवाई अड्डों और गैस खुदरा बिक्री से लेकर बंदरगाहों तक व्यवसायों को गति देने के लिए तैयार कर रहा है। उजास इजी ई स्कूटर जो बहुत कम कीमत में मिल जाता है, कीमत के बारे में बात करें तो कंपनी ने इसे 31,880 रुपए की शुरुआती कीमत एक्स शोरूम दिल्ली के साथ मार्केट में उतारा है। ऑन रोड होने पर इस स्कूटर की कीमत 34,883 रुपए हो जाती है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।